हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात्र की जय हो। सातवां अध्याय नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट भगवत ज्ञान। श्लोक नंबर 30। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए हैं मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं साधि भूताधि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले पितमा ते विदुर्युक्तचेतसः साधि भूताधि दैवं मां ఆది యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలే పిచమా తే విదుర్ యుక్త చేతసః సాధిభూతాది దైవమ్మ సాధి యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణకాలే పిచమా తే విదుర్ యుక్త చేతసః సాధిభూతాది దైవమ్మ సాధి యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణకాలే పిచమా తే విదుర్ యుక్త చేతసః శబ్దాత్ సాధిభూత స ఆదిభూత మతలబ్ తథా భౌతిక జగత్ కో చలానే వాలే సిద్ధాంత ఆదిభూత మతలబ్ యే సంసార కే జో జితనే భీ ప్రాణీ హై ఉన్కో చలానే కే జో సిద్ధాంత హై ఉన్కో బోల్తే స ఆది ఔర్ ఆది యజ్ఞ యానీ సమస్త దేవతాం సారీ ఆది దైవం యానీ సమస్త దేవతాం కే నిమిత్ర నియమిత కర్నే వాలే అబ్ యే భౌతిక జగత్ కే జితనే భీ సిద్ధాంత హై ఉన్కో కంట్రోల్ కర్నే వాలే ఆది దైవం యానీ జో దేవతాం హై ఉన్కో నియంత్రిత కర్నే వాలే మామ్ యానీ ముజ్కో స ఆది యజ్ఞం యానీ సమస్త యజ్ఞోం కో నియంత్రిత కర్నే వాలే చ భీ యే జో జాన్తే హై భగవాన్ కే రహే హై యే విదు విదు కా మతలబ్ హోతా హై జాన్తే హై ఠీక్ హై జో జాన్తే హై కిస్కో ముజ్కో కిస్ తరహ జాన్తే హై సాధిభూతం యానీ జితనే భీ భూత ప్రాణీ ఉన్కో కంట్రోల్ కర్నే వాలా మే హూ ఆది దైవం యానీ జో జితనే భీ దేవతా హై ఉన్కో కంట్రోల్ కర్నే వాలా మే హూ సాధి యజ్ఞం యానీ జితనే భీ యజ్ఞ హై ఉన్కో నియంత్రిత కర్నే వాలా భీ మే హూ చ యే విదు జో ఏసా జాన్తే హై వో క్యా ప్రయాణ కాలే మతలబ్ మృత్యు కే సమయ అపి యానీ భీ చ తథా మామ్ యానీ ముజ్కో తే విదుర్ వే జాన్తే యానీ ఇత్నా ఇంపార్టెంట్ బాత్ యహాన్ పర్ భగవాన్ బతాతే హై కి దేఖో మృత్యు కే సమయ తుమ్ జో సోచోగే నా వహీ తుమ్హారా ఇస్ పూరే జీవన్ కా ఉస్ సమయ రిజల్ట్ హై సమ్జో అబ్ ఉస్ సమయ ఆప్ క్యా పేపర్ మే లిఖ్ రహే హో ఉసీ కే అనుసార్ తుమ్హే దూసరా జన్మ మిలేగా తో మృత్యు కే సమయ అగర్ ఆప్ కుచ్ భీ సోచ్ రహే హో తో ఆప్కో ఏసా హీ రిజల్ట్ మిలేగా లేకిన్ యహాన్ భగవాన్ కేతే ప్రయాణ కాలే పిచ మామ్ మృత్యు కే సమయ ముజ్కో తే విదుర్ యుక్త చేతసా తే విదుర్ మతలబ్ వో లోగ్ జాన్తే హై కౌన్ సే లోగ్ జో ముజే ఆదిభూతం ఇస్ జగత్ కా ఆది దైవం దేవతాం కా ఆది యజ్ఞం యానీ యజ్ఞోం కా నియామక్ జాన్తే హై ప్రయాణ కాలే పిచ మామ్ వో మృత్యు కే సమయ భీ తే విదుర్ యుక్త చేతసా వే జాన్ సక్తే యుక్త చేతసా మతలబ్ జిన్ కే మన్ ముజ్ మే లగే హువే హై అబ్ జిన్ కే మన్ ముజ్ మే సహీ తరహ సే లగే హువే హై వో ముజే సబ్ కుచ్ జాన్తే హై కి ఇస్ భౌతిక జగత్ కా భీ నియమిత కర్నే వాలా మే హూ దేవతాం కా నియంత్రణ కర్నే వాలా మే హూ యజ్ఞోం కా నియామక్ మే హూ జబ్ వో సబ్ కుచ్ ముజే జాన్నే లగ్తే హై తో ఫిర్ వో ఆసానీ సే అప్నే మన్ కో ముజ్ మే లగా సక్తే హై ఔర్ మృత్యు కే సమయ భీ ముజ్ భగవాన్ కో జాన్ సక్తే హై సమజ్ సక్తే హై అనువాద్ దేఖియే జో ముజ్ పరమేశ్వర్ కో మేరీ పూర్ణ చేతనా మే రహకర్ ముజే జగత్ కా దేవతాం కా తథా సమస్త యజ్ఞ విధియోం కా నియామక్ జాన్తే హై వే అప్నీ మృత్యు కే సమయ భీ ముజ్ భగవాన్ కో జాన్ ఔర్ సమజ్ సక్తే హై శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ అత్యంత సుందర రీతి సే సమ్జాయేంగే తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై హో శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ अत्यंत ही सुंदर रीति से यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। यदि आप कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हो, कृष्ण को केंद्रित बनाकर कार्य करते हो, तो फिर भगवान को समझने की राह में कभी भले भगवान कुछ भी करते हैं आप, लेकिन भगवान की रियल स्थिति आपको पता है क्या है। भगवान मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कृष्ण से ऊंचा कोई सत्य नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको ये पता है और आप कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हो तो कभी भी अपने पद से विचलित नहीं होते। और जब इस तरह से आपको कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है, तो कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह से भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। जैसे हमने पढ़ा, भगवान ने बताया कि देवताओं को जो कुछ प्राप्त होता है वे सब मैं उन्हें दे रहा हूँ, देवताओं के द्वारा आपको जो कुछ प्राप्त होता है वो सब भी मैं उन्हें दे रहा हूँ, और देवताओं के लिए जो श्रद्धा आपके मन में उत्पन्न होती है वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो देवताओं की किस तरह नियामक है और भौतिक जगत के भगवान किस तरह से नियामक है, जैसे भगवान ने बताया कि यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, ये प्रकृति मम माया मेरी माया है, तो मैं आच्छादित रहता हूँ अपनी माया। जैसे जैसे भगवान ने सब कुछ बताया है भगवद गीता में, तो यहाँ पर ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह से भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गावलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया कि जब हम भक्तों का संग करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, कृष्ण भावनामृत में ही रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जब कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ेगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और जब प्रेम बढ़ेगा तो जब मृत्यु होती ना, तो मृत्यु के समय क्या होता है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही व्यक्ति आपको याद आ रहा होता है। किसी को अपने धन से प्रेम होता है तो धन याद आता है, किसी को अपने बिजनेस से प्रेम होता है बिजनेस याद आता है, लेकिन किसी को यदि भगवान से प्रेम हो जाता है तो फिर उसे मृत्यु के समय भगवान आता है। और यही वास्तविक कल्याण है जीव का, कि मृत्यु के समय आपको भगवान की याद आ जाए। बस आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ सातवां अध्याय विशेष रूप से बताया है कि बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। आपको कैसे कृष्ण भावना में कैसे प्राप्त होगी, संगति से। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्य संगत्याग ऐ वैष्णव आचार। वास्तव में आप अगर असत संग को त्याग के भक्तों का संग करते हो तो समझो आपने कृष्ण भावना अमृत स्टार्ट करे, शुभारंभ होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने सुंदर शब्द उच्चारण किया, कृष्ण भावना अमृत का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी कृष्ण भावना किसी भी व्यक्ति ने जिसने कंठी पहनी हो या तिलक लगा के आपके सामने खड़ा हो गया और आप समझो कि मुझे इसका संग करना है और इसका संग करके मुझे भगवत भक्ति प्राप्त होगी, नहीं। वास्तव में यह शरीर की बात नहीं होती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है जिसकी आत्मा कृष्ण के प्रति आकर्षित होगी, जो स्वयं कृष्ण के प्रेम से जिसका हृदय सना हुआ होगा वही तो आपको कृष्ण प्रेम दे सकता है। बाकी जो भौतिक धरातल तक होगा खुद ही, जिसे भौतिक आकर्षण होगा, तो भले ही वो कितना ही भक्ति का बताए कि भाई मैं भक्त हूँ, या जो भी कितना ही भक्ति का अपने आचरण अपने है ना शरीर से दिखाए कि ये भक्त, जैसे सारी चीजें लगाए, लेकिन वो भक्त नहीं होता। यह श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। बस इतने प्योर भक्त जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट से आपको भगवान के साथ आपका अटैचमेंट। कभी कभी ऐसा होता है, हम भक्त मतलब जो तथाकथित न्यू डिवोटीज होते हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो किसी भी भक्त के साथ ना जुड़ जाते हैं और समझते हैं कि इसके साथ जुड़ना ही काफी है। लेकिन उसके साथ जुड़कर यदि कृष्ण प्रेम आपका बढ़ नहीं रहा है, तो फिर आप उसके साथ संगति मत करो। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। फिर डायरेक्ट से भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ना चाहिए और भागवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। फिर उसे याद आता है, वो अपने इतने शुद्ध भक्त होते हैं कि जिससे भी मिलते हैं उसे ये याद कराते हैं कि कृष्ण भगवान है और तुम्हें केवल कृष्ण, तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के दास हो। कृष्ण से प्रेम करना तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो आपका और कृष्ण का मिलाप करा देना, वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। वो फिर हमें बताता है कि कैसे जन्म जन्मांतर से भौतिक इच्छाओं और वासनाओं के कारण हम इस भौतिक जगत में गिरे हुए हैं और कृष्ण को भूल गए हैं। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। अब हम किसी शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम इस भगवान श्री कृष्ण को भुलाकर, क्योंकि हम भगवान के वास्तविक अंश हैं और भगवान के ही हम दास हैं, लेकिन भगवान को भुलाकर प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हैं। वे बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भुगत रहे हैं। बारंबार इस शरीर को कितना दुख पहुंचता है, सॉरी शरीर को मतलब शरीर इस आत्मा को कितना दुख पहुंचता है जब इसे अलग अलग शरीर बदलने पड़ते हैं। आत्मा भगवान का अंश है और हम इस भौतिक संगति से बहुत ज्यादा आकर्षित, इंद्रिय तृप्ति से बहुत ज्यादा आकर्षित होने के कारण इस आत्मा पर कितना जुल्म करते हैं। कभी इसको कुत्ते के शरीर में डाल देते हैं, कभी इसको है ना सुअर के शरीर में, तो कभी रेंगने वाले कीड़े के शरीर में। से हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, हमारी अज्ञानता, हमारे मोह के कारण इसे ये सब भुगतना पड़ता। लेकिन जब हम किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में आते हैं तो हमें पता चलता है, प्रबुद्ध हो जाते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो गए हैं। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदउपयोग परमेश्वर की अहितु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में जीव को यह समझना है भक्तों के संग से कि यह मनुष्य जन्म हमें इन भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में आसक्ति के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि कृष्ण भावनामृत को पुनः, जो वास्तविक हमारी स्थिति है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहितु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जीव का मनुष्य जन्म का एक ही सदुपयोग है, भक्ति। यदि हम भक्ति नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते, कथाओं का श्रवण नहीं करते, तो इसको शास्त्र कहता है द्विपद पशु। भले ही तुम्हें मनुष्य का जन्म मिल गया है, लेकिन देखने में तुम मनुष्य हो, लेकिन दो पैर वाले पशु हो, ऐसा कहता है शास्त्र। तो सदुपयोग नहीं किया मनुष्य जन्म का, वो दुरुपयोग करता है जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वह है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव और अभाव ग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञानी और परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। ये जो विभिन्न वस्तुएं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें अध्याय में हमने पढ़ा है ये सब कुछ मनुष्य के विषय में, कि कौन कौन से मनुष्य भगवान के पास जाते हैं, जिज्ञासु होते हैं, आर्थ होते हैं, वो आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के विषय में पढ़ा, परमात्मा ज्ञान के विषय में, और जरा मरण मोक्षाय, जन्म मृत्यु और रोग से मुक्ति के विषय में पढ़ा। और आज हम पढ़ रहे हैं सारी भूतादि दैवम्मा सारी यज्ञम चाहिए विदु, जो भगवान की पूजा करता है। क्या सोच करके? भगवान जगत का, देवताओं का तथा इन समस्त यज्ञ विधियों का भी नियामक है, यानी परमेश्वर की पूजा, इसके विषय में बताया गया। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। अब वो तो धीरे धीरे आता है, जैसे भगवान ने बताया था 19 में, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि जिस तरह से पहले आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी इसके विषय में बताया, फिर बोला इनमें से ज्ञानी मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, फिर ज्ञानियों के विषय में बताया, ज्ञानी के बाद बोला भगवान ने कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये सारे जीव जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ज्ञान प्राप्त होता है और अनेक अनेक जन्मों के बाद वो मेरी शरण में आता है, माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक अलग बात बता रहे हैं कि वो तो बहुत 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 जन्मों के बाद आते हैं, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, फिर वो क्या करता है, वह डायरेक्ट से कृष्ण भावनामृत के कार्यों को में प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण भावना के अमृत के कार्य क्या है? भगवान की विग्रह सेवा करना, भगवान को प्रसाद भोग लगाना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, संकीर्तन करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, और क्या है, उत्साह निश्चयान धैर्यान, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ भगवान के आदेशों का पालन करना, तत्तत् कर्म प्रवर्तते। ये सारे कार्य से क्या होगा कि हमारी भक्ति षड्भिर् भक्तिर् विशिष्यते, भक्ति उन्नति होती है। तो ये होते हैं कृष्ण भावनामृत कार्य। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको है ना, ये इनडायरेक्टली सारी विधियों को, विभिन्न विधियों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट से कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो सकता है और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और जब हम कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, पवित्र नाम का जप करेंगे और कृष्ण की भक्ति के विभिन्न नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, तो इससे क्या होगा कि हमारी भौतिक वास्तविक जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। फिर उसे इतना अच्छा लगता है भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसे सारे उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। उसको पता होता है बाकी सारे कर्म कांड मुझे करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, मैं खाली कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहा हूँ, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ, तो मेरे सारे उद्देश्यों की पूर्ति इसी से हो जाएगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ वृत्त कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। दृढ़ श्रद्धा पैदा हो जाना किसी के विषय, किसी जीव के हृदय में, कि बस कृष्ण की भक्ति ही मुझे मेरे वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कराएगी, मेरे समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कराएगी, तो यह दृढ़ श्रद्धा जो कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसे दृढ़ वृत्त कहा जाता है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। शुरुआत में श्रद्धा हो गई, फिर आप श्रद्धा के साथ उन नियमों का पालन करोगे और पालन करने के बाद अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है, श्रीमद् भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय भगवत विज्ञान सॉरी भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान ज्ञान का मतलब होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या हैं और हम किधर से आए हैं, हमें किधर जाना है। तो यहाँ पर ये जो सातवां अध्याय है हमारे इन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है कि हम वास्तव में क्या हैं, हमें क्या करना है और हमें किधर जाना है। सारा ज्ञान भगवान के विषय में सब कुछ यहाँ सातवें अध्याय में हमें संक्षिप्त में भगवान ने बताया है। वास्तव में इस सातवें अध्याय में तीन प्रमुख टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। एक भगवान के बारे में ज्ञान। भगवान के बारे में ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक। जैसे पहले भगवान ने कहा कि सुनो तो सही पाठ कि तुम किस तरह से मैया सक्त मना पाथ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो कि किस तरह से तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया जान सकते हो। और इस तरह से इसको जान लोगे ना, जब तुम मेरे विषय में जान लोगे और मुझ में आसक्त हो जाओगे तो कुछ भी और जानने के लिए तुम्हारे पास रह नहीं जाएगा। और उसके बाद भगवान ने 4 और 5 में अपनी विभिन्न शक्तियों के विषय में बताया। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया, श्लोक नंबर 4 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी 8 प्रकार की शक्तियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब अपराशक्तियां हैं। भगवान ने बताया 5वें श्लोक में, श्लोक नंबर 5 में, अपरेयम इतस्त्वन्यान प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारयते जगत। और मेरी एक परा प्रकृति है जो इस भौतिक प्रकृति का विदोहन करती है। उसके बाद भगवान ने बताया कि भले ही मेरी ये सब शक्तियां हैं परंतु इन सारी शक्तियों में मैं परम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति जगत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है और यह जगत कैसे है। मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। ये तो उस प्रकार से जैसे धागे में मोती पिरे होते हैं, ये पूरा जगत जो है मेरे आधार पर टिका हुआ होता है। मेरा आधार ना हो तो जगत बिखर जाए। उसके बाद भगवान ने बताया कि किस प्रकार से, भगवान ने अपने विषय में बताया कि किस प्रकार से हर एक वस्तु में आप मेरा अनुभव कर सकते हो। भगवान ने बताया 8 में, रसो हम अपसुकौंते या प्रभास्मी शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खे पौरुषम ऋषु। मैं जल का स्वाद हूँ, चंद्रमा तथा सूर्य का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। भगवान ने कहा जो इटर्नल है और जो मेन है, मतलब जो प्रथम है, जो सबसे सुंदर है, पुण्यो गंध पृथ्वीयां च तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। के पुण्य आदि सुगंध, बाकी जितनी सुगंधें निकलती हैं वो धरती से विभिन्न वस्तुएं निकलने के बाद उनसे निकाली जाती हैं, लेकिन आदि सुगंध में हूँ पृथ्वी की, तेजस्वियों का तेज में हूँ, तपस्वियों का तपस में, जीवों का जीवन में हूँ। बीजम नाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्मि मामहम। के मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों के अंदर जितनी बुद्धि है वो भी मैं हूँ और तेजस्वियों के अंदर जितना तेज है वो भी मैं हूँ, बलवानों के अंदर जितना बल है वो भी मैं हूँ, यहाँ तक कि जो वो काम जो धर्म के विरुद्ध ना हो, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, वो काम भी मैं हूँ जो धर्म के उसूलों के खिलाफ नहीं है। आगे भगवान ने बहुत सुंदर बताया, ये सब छोड़ो, ये जो जितने भाव आते हैं, ये चाहे वह सात्विक का भाव हो राजसा तामसा चाहिए, मत एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु तेमयी, के ये सब सारे भाव भी मुझसे ही आते हैं। उसके बाद यहाँ तक 12 श्लोक नंबर 12 तक भगवान ने बताया अपने विषय में, और 12 से लेकर 25 तक भगवान ने शरणागति के विषय में बताया। 13 से लेकर भगवान ने कहा, त्रिबिल गुणमय भावे है ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाती मामे भी परम विवेक, सारे जीव जो होते हैं वो इन तीन गुणों के द्वारा इतने मोहित हो जाते हैं कि वो नहीं जानते कि मैं कितना परम हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं कभी भी मैं सनातन हूँ, समाप्त नहीं होता, और ये पूरी प्रकृति दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, ये जो प्रकृति है जो देवी माया है वो दिव्य है और उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी शरण में आ जाएगा उसके लिए उसे पार करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भगवान ने बताया आते नहीं है, आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो दुष्ट है, जो मूढ़ है, वो मेरे पास नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने असुरों जैसा स्वभाव धारण किया है। और फिर भगवान ने बताया बहुत ही सुंदर रीति से, श्लोक नंबर 16 से भगवान ने बताया कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, चतुर्विधा वजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, कौन कौन से हैं? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन भगवान ने कहा तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उनमें ज्ञानी है जो भक्ति करता है, प्रियो ही ज्ञानी नोत्तर्थ, मुझसे प्रेम करता है तो वो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। आगे भगवान ने एक सुंदर सा श्लोक कहा है, श्लोक नंबर 18 बहुत ही सुंदर है, मतलब इसमें भगवान की लालसा दिखती है, मतलब एक लालच होता है ना हृदय के अंदर, एक इच्छा। भगवान कहते उदाराः सर्व एव एते, ये सारे उदार हैं। अब उदार का क्या मतलब होता है, मतलब कोई लोग होते हैं ना जैसे बहुत ज्यादा दान देते हैं, उनको हम बोलते हैं कितने उदार हैं, है ना। लेकिन भगवान ने यहाँ पर उनको कहा है कि जो मेरे पास आते हैं, चाहे वो धन की इच्छा से आए हों, चाहे वो दुखी होकर आए हों, चाहे जिज्ञास हो, चाहे ज्ञानी हो, जैसे भी आए उदार हैं। उदार मतलब मुझ पर कितनी कृपा की है उन्होंने, मुझसे कितना प्रेम कर, मेरे लिए आए वो, भले कुछ इच्छा करके आए, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो बहुत लाइक, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके पास कोई आता है। भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं ये सारे उदार हैं, बहुत बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दी उन्होंने, इनका बहुत आभार है मेरे ऊपर, मैं कैसे उनका आभार चुका सकूंगा, ये सारे आभार हैं, मतलब ये सारे बहुत ज्यादा उदार हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा के जैसा है, जैसा मैं अपने से प्रेम करता हूँ ना वैसे ही मैं ज्ञानी से प्रेम करता हूँ। और भगवान कहते हैं आस्तः सही युक्ता नाम मामे वानुत्तमाम गति। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी कि भगवान कहते हैं ज्ञानी को मैं अपने समान मानता हूँ, और यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भागवतम का एक श्लोक कहा है, साधवो हृदयम महियम साधुनाम हृदयम तो हम, के जो साधु होते हैं वो मेरे भक्त जो होते हैं मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। यानी कि ज्ञानी को भगवान ने अपनी आत्मा अपने आप के समान समझा। अब यानी भगवान ज्ञानी का बहुत आदर करते हैं लेकिन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान ने बताया जो भी मेरे पास आते हैं वो बहुत उदार हैं, आसिता है संयुक्त मामे वान तमाम गति, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। अब प्राप्त करते कब करते हैं भगवान 19 में बताते हैं, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट से कि ज्ञानी होंगे या जिज्ञासु होंगे या अर्थ जो भी होंगे वो फौरन से मुझे प्राप्त करेंगे, नहीं भगवान ने कहा है सीधा 19 में हम देख सकते हैं, भगवान कहते हैं भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद वो मेरी शरण। अब देखो पूजा करने और शरण में आने का यहाँ पर भगवान डिफरेंस बताते हैं। पूजा कोई भी कर सकता है, ये जो सब आए ना भगवान के चतुर्विधा भजन्ते माम, भजन्ते भगवान की पूजा कर सकते हैं कोई भी, चाहे वो आर्थ हो, जिज्ञास हो, अर्थात हो, ज्ञान। लेकिन शरण में आने का क्या मतलब है? जैसे आज हम श्लोक में पढ़ रहे हैं, शरण में आ गए मतलब भगवान को जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानकर, सब कुछ मानकर भगवान की शरण में आते कि भगवान की शरण में आकर ही मेरा कल्याण हो सकता है, भले ही मुझे प्राप्त होता है या नहीं होता है। लेकिन बाकी सब आए वो भगवान को भजते तो हैं, चतुर्विधा भजनते तो करते हैं, लेकिन भगवान की शरण में नहीं आए, वो आए हैं अपनी इच्छाओं के कारण। यहाँ पर भगवान कहते लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो वास्तव में ज्ञानी होता है, और इतना आसानी से नहीं आता, बहुत बहुत जन्मों के बाद, तपस्या के बाद वो आता है, और ये उसको समझ में आती है बात, क्या वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। और आगे भगवान देवताओं के 20 से लेकर 23 तक भगवान बताएंगे देवताओं के पास कौन से जाते हैं। भगवान कहते हैं कामस्तस्य हित ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियतास्य। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। आगे भगवान ने 21 में कहा कि भले ही वो देवताओं के पास जाते हैं, परंतु क्योंकि देवताओं के पास जाने के लिए भी श्रद्धा की आवश्यकता होती है, मन हृदय में बैठा हुआ हूँ मैं, परमात्मा हूँ, श्रद्धा मैं प्रोवाइड करता हूँ। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं ही उनको वो श्रद्धा प्रदान करता हूँ ताकि वो उसी देवता विशेष की भक्ति कर सके, और श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद वो क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। सदया श्रद्धया युक्त तस्य आराधना मीहते, उसकी आराधना करते हैं, और उसकी आराधना करने के बाद क्या होता है, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हि तान, अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और वो इच्छाएं जो पूरी हो रही है, लाभ जो प्राप्त हो रहा है वो भी मैं दे रहा हूँ, भगवान कहते हैं। लेकिन फिर भी ये मत समझना कि देवताओं की भक्ति और मेरी भक्ति एक ही बात है। देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होगा उसका क्या होगा, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेदसाम, उनके फल अंतवत्तु समाप्त हो जाने वाले हैं, और देवान देव यज्ञो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामति। ये मत सोचना कि देवताओं के द्वारा जो तुम्हें फल प्राप्त हुआ मैंने दिया है, देवताओं की जो उपासना की है वो श्रद्धा मैंने दी है, तो देवताओं की पूजा करके भी तुम मेरे पास आ सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। देवताओं की पूजा करके देवान देव यज्ञो यान्ति, देवताओं के पास जाओगे और मद भक्ता यान्ति नाम अपी, मेरे पास आ जाओगे। और भगवान ने आगे श्लोक नंबर 24 में बताया अव्यक्तम व्यक्तमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। खाली देवताओं के पुजारी बुद्धिहीन नहीं होते हैं, जो निराकार समझते हैं, मेरे स्वरूप को नहीं जानते और समझते हैं कि मैं पहले निराकार था, साकार रूप धारण किया है, वो भी परम भावम अजानंतो माम अव्ययम अन उत्तमम, वो नहीं जानते कि मैं अव्यय हूँ, मेरा कभी क्षय नहीं होता, मैं उत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 25 में बताया नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयम ना विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम्। मैं अल्पज्ञों तथा मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित हूँ। अपनी योग माया के विषय में भगवान बताते हैं कि मैं तो उनके सामने आता ही नहीं हूँ, वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। और श्लोक नंबर 26 से लेकर 30 तक भगवान ने शरणागति का फल क्या होता है, अगर आप भगवान की शरण में आते हो तो उसका क्या फल होता है, उसके विषय में बताया। भगवान ने कहा कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। मेरी शरण में आ जाओगे तो क्योंकि मैं भूतकाल भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ और तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मेरे पास आओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा फ्यूचर सेव हो जाएगा, प्रेजेंट सेव हो जाएगा, और बहुत भूतकाल में जो अपराध किए हैं वो सब क्षय कर दूंगा। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतप। ये संसार में जितने भी जीव हैं, जब से पैदा हुए हैं इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए मेरी भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेरी भक्ति करते हैं तो उसका फल क्या होगा? आगे भगवान कहते हैं, येषां त्वंतगतं पापं जनाः पुण्यकर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिनके पूर्व जन्मों के अपराध नष्ट हो गए हैं और इस जन्म के भी अपराध नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं और फिर मेरी भक्ति करते हैं। और जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते धम्म तद्विदुः कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं, अब वो मेरी भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल होगा कि उसे जरा मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान कहते हैं वो साधारण नहीं है, वो वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। आज भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, सारी भूतादि दव्यम सारी यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिचमा ते विदुर युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया हमें। वास्तव में ये सातवां अध्याय पूरी भगवद गीता के तत्व ज्ञान की समरी है, तत्व ज्ञान जो है उसका सार है। पर ये सार जो सार है वो अलग अलग मार्गों का सार नहीं है। जैसे अभी दूसरा अध्याय है वो भी क्या है, दूसरे अध्याय को हम बोलते हैं गीता का सार, लेकिन दूसरे अध्याय में क्या है, सारे मार्ग हैं, कर्म कांड है, कर्म योग है, ध्यान योग है, इन सारे मार्गों का सार बताया था, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी सार बताया जा रहा है, परंतु यहाँ पर वो सार केवल भगवान पर केंद्रित है, भगवान ही वास्तव केंद्रित है। वहां पर दूसरे अध्याय में भगवान केंद्रित नहीं थे, दूसरे अध्याय में केंद्र क्या था, आत्मा का उद्धार कैसे हो, है ना। दूसरे अध्याय में हम आत्मा के विषय में पढ़ रहे थे, तो सारा कर्म योग से कैसे होगा, ज्ञान योग से कैसे होगा और ध्यान योग से कैसे होगा, ये सब पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें इस अध्याय, क्योंकि ये भक्ति योग का सेंटर है, ये भक्ति योग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रथम चरण है, तो इसमें भगवान ने केंद्र किया स्वयं को। और यहाँ पर सार है कि कैसे सारे मार्ग भगवान से संबंधित हैं। तो सबसे पहले भगवान इस भौतिक जगत और भौतिक प्रकृति से अपना संबंध बताते हैं। फिर सातवें अध्याय में, सातवें श्लोक में भगवान ने कहा सूत्रे मणि गणाय, कैसे धागे, जिस तरह से धागे पर सारे मोती आश्रित होते हैं, वैसे उसी प्रकार सारे जीव जो है मुझ पर आश्रित है, वो किस प्रकार से इन भौतिक चीजों के अंदर समाये हुए हैं, ये सब भगवान ने 14 उदाहरणों से बताया। क्या उदाहरण बताए, 8 से लेकर 11 तक जैसे हमें अभी पढ़े, तो उनमें हमें भगवान ने बताया कि किस तरह से वो हर एक भौतिक वस्तु में समाये हुए हैं। और फिर भगवान के शरण में व्यक्ति किस प्रकार से आता है ये बताते हैं। तो पहले भगवान ने बताया 15 में जो नहीं जाते उनके विषय में, और उसके बाद बताया जो जाते हैं उनके विषय में, यानी 16 से 19 तक बताया। और भगवान ने ये भी बताया कि जो भगवान के अलावा किसी और की शरण में जाते हैं उनके बारे में 20 से 25 तक हमने अभी पढ़ा, और 20 से 23 तक भगवान ने देवी देवताओं के विषय में बताया, और 24 और 25 में ब्रह्म की उपासना के विषय में बताया कि कैसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा मुक्त हो सकती है, इसका वर्णन किया। और यहाँ पर 29 और 30 में भगवान ये दिखा रहे हैं कि अर्जुन, तो अब भगवान ने क्योंकि सब कुछ अपने विषय में बता दिया, तो भगवान देखना चाह रहे हैं कि अर्जुन कितना ध्यान में परिपक्व हो गया। इसलिए क्या करते हैं, इस श्लोक में भगवान इस श्लोक में और अगले श्लोक में 29 में और 30 में कुछ ऐसे शब्द डाल देते हैं जो समझना बड़ा मुश्किल है। इसी के कारण अब क्या होगा, अर्जुन जब 8वां अध्याय शुरू होगा ना, अगला अध्याय, उसमें फौरन से सवाल पूछेंगे। अब 29 में भगवान ने 3 महत्वपूर्ण श्लोक शब्द पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा ते धम्म तद विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म साखिलम, ये महत्वपूर्ण शब्द, नए शब्द, और अभी ब्रह्म अध्यात्म कर्म, ये नए शब्द नहीं है, अध्यात्म पहले भी आया, कर्म पहले आया, लेकिन यहाँ पर बताने के लिए मतलब ऐसे बोले कि ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भगवान क्या कह रहे हैं। और एक चीज क्लियर है कि ब्रह्म और अध्यात्म ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भगवान ने बताया ते ब्रह्म अध्यात्मम कर्म चाखिलम, आध्यात्म अलग है ब्रह्म अलग है, ये दोनों भगवान ने इस बात को क्लियर किया। लेकिन फिर भी अभी तक ये भगवान ने इतना ज्यादा क्लियर करके बताया नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें जैसे वो ब्रह्म को भी जानता है, आध्यात्म को भी समझेगा, मतलब यहाँ पर लीन होने की बात नहीं की है। भगवान ने क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति वे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम, वो ब्रह्म को भी जानता है और आध्यात्मम कर्म चाखिलम, आध्यात्म कर्मों को भी जानता है। और भगवान से भगवान यहाँ से ये समझा जा रहे हैं कि क्योंकि यह भौतिक जगत दुखालय है, इस जगत में जब तक रहोगे तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा, तो इस जगत में आनंद नहीं करना है बल्कि इससे ऊपर जाना है, इसका वर्णन किया। तो भगवान ने कहा कि आगे बढ़ना है और बाहर निकलने के लिए तुम्हें मृत्यु के समय मुझ पर अपनी स्मरण, अपना जो स्मरण है ना वो मुझ पर टिकाना है। और किसी भौतिक वस्तु को यदि तुम्हें मृत्यु के समय याद आ गई तो पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं तीन शब्द बहुत ही सुंदर बताया भगवान ने, कहा आदिभूतम आदिदैवम आदियज्ञम। ये एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये सब में मैं नियामक हूँ, चाहे आदिभूत हो या भौतिक जगत हो उसका भी नियंत्रण करने वाला मैं हूँ, आदि देव जो देवता हैं उनका भी नियंत्रण करने वाला मैं हूँ, और आदि यज्ञ यानी जो यज्ञ हैं उनका भी नियंत्रण करने वाला मैं हूँ। जो ये जान लेता है और ये जानकर मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आता है, वही प्रयाण काले पीछे में माम ते विदुर युक्त चेतस, कि वो मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी बात खत्म की, लेकिन अर्जुन अभी तक इस बात को इतना क्लियर समझ नहीं पाया कि भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म क्या है पता नहीं, आध्यात्म कर्म क्या है, और प्रयाण मृत्यु के समय कोई किस तरह से भगवान को याद कर सकता है, ये सारी चीजें अर्जुन के समझ में नहीं आई हैं। इसलिए अभी अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे भगवान से, श्लोक नंबर 8.1 एंड 8.2 में। तो कृपया साथ रहिएगा, अर्जुन के प्रश्नों का आनंद और उससे भी ज्यादा आनंद आएगा जब भगवान इन सब चीजों को क्लियर करेंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।